संबंध।
अब आगे के दो श्लोकों में स्थिता प्रज्ञ कैसे बोलता है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं।
दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते।
दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्प्रिया नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या, अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है, भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहां कह रहे हैं। दुखे स्वनुद्विग्न मनाः, दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना न हो जाए इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है, उस प्रसन्नता के कारण कितनी प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्विग्नता नहीं होती। सुखेषु विगत स्प्रिय, सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी उसके भीतर स्प्रिया नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उनके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे ऐसी स्प्रिया नहीं होती, उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। वीतराग भय क्रोध है, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ गया है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है तो मन में भय पैदा होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, स्प्रिया, राग, भय और क्रोध रहते हैं तब तक वो साधक होता है। उनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है, उस वासना का दूसरा नाम ही आसक्ति और प्रियता है। मुझे वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है, कामना पूरी होने की संभावना है उसका नाम आशा है, कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की और पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है, लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में जो खिंचाव और श्रेष्ठ भाव है और महत्व बुद्धि है उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। स्थितधी मुनि रुच्यते, ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभाषेता के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसीलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहां मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा है। मननशील का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति न आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है। गीता 3रे अध्याय का 19वां श्लोक, और उसी से वह परमात्मा को प्राप्त हुआ है।